الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. روزے 40 سید الشہداء، جس جس کے دل میں سید الشہداء کی زیارت کی تمنا ہے، اس دعا اس حاجت کو دل میں رکھے کہ مولا اگلے برس یہ 40 آپ کے شہر میں آپ کی ذریعہ اقدس کے سامنے نصیب ہو، اس آرزو کو دل میں سجا کر میرے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق مولانا العظيم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. روزے اربعین سید الشہداء، میری گفتگو کا عنوان آفاق مہدویت، لیکن اپنی گفتگو اور موضوع میں وارد ہونے سے پہلے اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی اس حدیث شریف کو ذکر کر دوں، ابتداءً تبرکاً و تیمناً للمؤمن علامات خمس، مومن کی پانچ علامتیں ہیں، صلاۃ احدا و خمسین، 51 رکعت نماز پڑھنا ایک دن میں، والتختم بالیمین داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے نماز میں چاہے نماز کے علاوہ علامت مومن، تیسری علامت یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے، وتعفیر الجبین اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے، سجدہ خاک پر کرتا ہے، اور کیا کہنے اس خاک کے کہ جو خاک کربلا ہو۔ پانچویں علامت جو میرے مولا نے ارشاد فرمائی، وزیارت الاربعین، مومن کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ روز اربعین اپنے آقا و مولا سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں اور اسی دعا پر اس مجلس کا اختتام بھی ہوگا کہ بار الہ تجھے واسطہ حسین مظلوم کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، بار الہ ہمارے دل میں یہ تمنا ہے، ہمارے دل ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اپنے مولا کی ذریعہ اقدس کی زیارت کو، اپنے مولا کی قبر اطہر کی زیارت کو۔ بار الہ اس سال اگرچہ ہمیں اربعین حسینی کربلا معلہ میں نصیب نہ ہوا، لیکن آئندہ سال اور زندگی میں بار بار ہمارے نصیب میں اربعین حسینی کربلا معلہ میں لکھ دے۔ بار الہ دنیا میں بار بار آقا کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اس خصوصی دعا کی قبولیت اور تمام دلی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، موضوع گفتگو آفاق مہدویت، ہم دسویں تقریر میں وارد ہو رہے ہیں۔ ابھی مہدویت کے آفاق میں سے فقط پہلے افق میں بات جاری ہے، مہدویت اور عقیدے کا تعلق، مہدویت اور عقیدے میں معرفت خدا سے عقیدہ مہدویت کا تعلق بیان ہو چکا، مہدویت اور نبوت کا ارتباط بیان ہو چکا، مہدویت اور امامت عامہ کی بحث کی طرف کل کی مجلس میں اشارہ ہو چکا، ہماری گفتگو وارد ہو چکی تھی مہدویت اور امامت خاصہ، سید الشہداء آقا حسین سے میرے آقا امام زمانہ کا تعلق، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ شاہ کربلا اور منتقم کربلا کا تعلق، یا قرآن کی زبان میں کہیے تو والفجر کا والعصر سے تعلق۔ توجہ ہے عزیزوں، وہ کون سی مناسبت اس سے بہتر ہو سکتی ہے روز اربعین سے کہ جس میں آقا حسین اور آقا امام زمانہ کے تعلق کو بیان کیا جا سکے۔ کل اس تعلق کی پہلی جہت، کل پہلی وہ حیثیت، پہلا وہ نقطہ کہ جو میرے امام حسین کو میرے وقت کے امام سے خصوصی طور پر جوڑ دیتا ہے، کل آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کیا تھا، یقیناً اذہان میں محفوظ ہوگا، وہ نقطہ کیا تھا کہ خدا نے حضرت حجت کو، اپنی آخری حجت کو، امام قائم کو امام حسین کی نسل میں رکھا ہے اور خصوصی طور پر امام حسین کا نواں بیٹا قرار دیا ہے، اور کل میں نے اس نقطے کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج گفتگو کو ایک منزل اور آگے لے جاتے ہیں، امام حسین اور قائم آل محمد میں دوسرا گہرا ترین تعلق یہ ہے کہ اللہ نے امام زمانہ کو امام حسین کا منتقم قرار دیا ہے۔ توجہ ہے عزیزوں، آج اس نقطے کو اور ایک اور نقطے کو، تیسرے تعلق کو، تیسرے ارتباط کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ روز اربعین ہے، آقا حسین کا خوب تذکرہ ہوگا، शहजादी ज़ैनब उलिया का तज़किरा भी होगा। ये कैसे मुमकिन है कि रोज़े अरबाइन की मजलिस इन दोनों हस्तियों के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो जाए? तवज्जुहात आमादा हैं, बात को सुनने के लिए मुतवज्जे हैं, समाअतें बेदार हैं, तो मिलकर एक दुरूद पढ़िए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। और रब्त के जो इमाम हुसैन को कायम आले मोहम्मद से मिलाता है, अगर कुरान की रोशनी में पेश किया जाए तो कुरान मजीद में इरशाद होता है, वमन कुचला मजलूमा, जिस शख्स को जुल्म करके मजलूमियत की हालत में कत्ल कर दिया जाए, कुरान कहता है फकद जालना ले वली ही सुल्ताना, हमने इस मजलूम के वली को ताकतवर बना दिया, हमने इस मजलूम के वली को ये इख्तियार और इख्तदार दिया कि यह अपने मजलूम का बदला ले सके, इंतकाम ले सके। कुरान कहता है फला युसरिफ फिल कत्ल, ये जो मजलूम का वली है जिसे खून बहा का कत्ल कर देने का इंतकाम का इख्तियार दिया गया है, इसे चाहिए कि खून बहाने में इसराफ ना करे, हद से ज्यादा ना बढ़े, यानी जिसने कत्ल किया है फकत उसी को कत्ल किया जाए, किसी और शख्स को किसी दूसरे के जुर्म में ना मारा जाए। कुरान का आखिरी फैसला जानते हैं इस आयत में, इन्नहू काना मंसूरा, ये जो मजलूम का वली है, ये जो इंतकाम लेगा, ये मंसूर होगा, इसकी गैबी मदद की जाएगी। तवज्जो है, ये अमूमी आयत है, अमूमी तौर पर आयत में कई मसादीक आ सकते हैं। हर वो शख्स के जिसे नाहक कत्ल किया जाए, फिक्ही एतबार से उसके वारिस के पास इख्तियार होता है, चाहे तो इंतकाम ले, चाहे तो खून बहा ले ले, चाहे तो मुआफ कर दे। तवज्जो कीजिएगा, यह है अमूमी बात, लेकिन अगर खुसूसी तौर पर आयत के मिस्दाक में तदब्बुर किया जाए, आयत में दो हस्तियों का जिक्र है, दो लोग दो अशखास पाए जाते हैं, एक वो है कि जो मन कुचला मजलूमन है, जो मकतूल व मजलूम है, और दूसरा वो है कि जो इस मजलूम का वली है, कि जिसे खुदा ताकतवर कह रहा है, कि जिसका लकब आयत में मंसूर आ रहा है। दो हस्तियां हैं, एक मकतूल है और एक मकतूल का वली है। मेरे पांचवें सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पांचवें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत शरीफा की खुसूसी मिसदा, इस आयत में जिसे मजलूम और मकतूल कहा जा रहा है, उससे मुराद हमारे जद हुसैन अलैहिस्सलाम है, और जो इस मकतूल का वली है, कि जो मंसूर भी है, कि जो मुंतकिम भी है, वो हमारी नस्ल में आने वाले आखिरी इमाम कायम आले मोहम्मद है, कि जो जब जुहूर फरमाएंगे तो अपने जद हुसैन का इंतकाम लेंगे, और इस इंतकाम में खुदा इनकी मदद फरमाएगा। तवज्जो है, यही वजह है ना कि जब ज़ियारत आशूरा मुकद्दसा की तिलावत करते हैं, तो जब इमाम जमाना का तज़किरा आता है तो क्या लफ्ज आता है, अल मंसूर मिन आले मोहम्मद, आले मोहम्मद में वो हस्ती के जिसकी मदद की जाएगी, कि गैबी मदद इसे हासिल होगी अपने जद हुसैन का इंतकाम लेने में। लिहाजा आका हुसैन और आका इमाम जमाना को जो दूसरा नुक्ता अहम तरीन बहुत गहरा ताल्लुक जो जोड़ रहा है, वो क्या है कि इमाम जमाना ही अपने जद हुसैन का इंतकाम लेंगे। अल्लाह अकबर, ये कोई कोई मामूली ताल्लुक नहीं है। किसके इंतकाम की बात हो रही है? वली खुदा के इंतकाम की, हुज्जत खुदा के इंतकाम की, नवासे रसूल के इंतकाम की। अब यहां एक सवाल उठता है, और बड़ा ही गहरा और कीमती सवाल, कि खुदा ने मकतूल के वाली वारिस को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने मकतूल का इंतकाम ले। आम तौर पर आम दुनिया में जब किसी को कत्ल कर दिया जाए तो उसका रिश्तेदार अपनी कराबत, अपनी रिश्तेदारी, अपने ताल्लुक की वजह से अपने मजलूम का इंतकाम लेता है। यहां मेरा सवाल है, जब आका इमाम जमाना जहूर फरमाएंगे और अपने जद हुसैन का इंतकाम लेंगे, तो क्या ये इंतकाम फकत रिश्ते और कराबतदारी की वजह से लिया जाएगा? तवज्जो कर रहे हैं नहीं अजीजों, बात इससे बहुत ज्यादा गहरी है, और बात की गहराई का अंदाजा इस जुमले से लगाएं कि ज्यारत आशूरा में इमाम हुसैन को मुखातिब करके क्या कहते हैं, अस्सलाम अलैका या सारल्लाह वबना सारे, मेरा सलाम हो उस हुसैन पर कि जिसका खून बहा खुदा के जिम्मे है, कि जिसका इंतकाम खुदा की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हुसैन कोई आम इंसान नहीं है, हुसैन कोई आम हस्ती नहीं है, हुसैन का कत्ल कोई मामूली जुर्म नहीं है, हुसैन हुज्जते खुदा है, हुसैन वलीये खुदा है, हुसैन का खून बह जाना कोई मामूली काम नहीं है। आज की मजलिस में ही आखिर में ये पेश करूंगा कि कितना अजीम बोझ है, कितनी अजीम बात है, खूने हुसैन का बह जाना कोई मामूली खून नहीं है। लिहाजा चूंकि हुसैन हुज्जते खुदा है, हुसैन वली ये परवरदिगार है, लिहाजा हुसैन का खून बहा भी अल्लाह के जिम्मे आता है। अब जब मेरे वक्त के इमाम जहूर फरमाएंगे और हुसैन का इंतकाम लेंगे, तो ये दर हकीकत अपने रिश्तेदार का इंतकाम नहीं लिया जा रहा है, दर हकीकत ये वली खुदा का इंतकाम लिया जा रहा है, दर हकीकत ये वो खून है कि जिसका इंतकाम अल्लाह के जिम्मे है। दर हकीकत अल्लाह अपना काम अपने हुज्जत अपने कायम से ले रहा है। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़िए कायम आले मोहम्मद की आदमत पर। वो जो फरमा रहे हैं बात की गहराई को महसूस फरमा रहे हैं, ये कारे खुदाई है कि जो इमाम जमाना के हाथों से अंजाम पाएगा। हुसैन का खून बहा अल्लाह के जिम्मे है, हुसैन अल्लाह की हुज्जत थे, हुसैन अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे साथ आ गए, जरा बात को एक मंजिल और आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है, यही ताल्लुक है सैयदुश्शहदा का और आका इमाम जमाना का, कि जिसकी वजह से, कि जिसकी बिना पर जब इमाम जमाना जहूर फरमाएंगे तो उनका नारा, उनका शेआर, इमाम जमाना तशरीफ क्यों लाएंगे, यमला उल अर्ध अदलन व किस्ता, जमीन को अदलो इंसाफ से भरना है, लेकिन शेआर ये नहीं लगाएंगे। इमाम जमाना अपने जद रसूल अल्लाह के जानशीन है, लेकिन नारा रसूल के नाम का नहीं लगाया जाएगा। इमाम जमाना आले मोहम्मद को उनका हक दिलाने तशरीफ लाएंगे, लेकिन शियार आले मोहम्मद का बुलंद नहीं होगा। जब मेरे वक्त के इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या शियार बुलंद करेंगे, या लसारातिल हुसैन, ए हुसैन का इंतकाम लेने वालों मेरे साथ मिल जाओ। ये एक और रब्त है कायम आले मोहम्मद में और उनके जद हुसैन में, कि जब आका इमाम जमान तशरीफ लाएंगे तो अपने जद हुसैन के नाम का शिआर बुलंद करेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, अगर समाते मुतवज्जे हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यही वजह है जब कायम तशरीफ लाएंगे हुसैन का इंतकाम लेने के लिए, जब कायम तशरीफ लाएंगे तो उनका शियार या लसारातिल हुसैन होगा, अपने जद हुसैन के नाम पर होगा। और आज की मजलिस के आखिर में यह भी पेश करूंगा कि जब कायम खाने काबा से टेक लगा कर खड़े होंगे, खुदा हम सबको वो हसीन मंजर देखना नसीब फरमाए, तो उस वक्त मौला अपना तारुफ किस जुमले से करवाएंगे। इस बात को फिलहाल रहने दीजिए, या लतारातिल हुसैन का नारा लगाया जाएगा, अपने जद हुसैन के नाम के शार को बुलंद करेंगे। और ये कौन सा शार है, आपने मुहर्रम की इब्तदा में हमेशा ही इब्ने शबीब वाली रिवायत सुनी होगी कि जो मौला रजा फरजंदे शबीब को इमाम हुसैन पर गिरिए के फजाइल बता रहे हैं, यब्न शबीब इन कुन सबाकियन लिशाए फबकी अलल हुसैन, ए फरजंदे शबीब अगर किसी चीज पर रोना चाहो तो मेरे जद हुसैन पर रोया करो। ये रिवायत आप सुनते हैं ना, इस रिवायत में आगे जाकर मौला रजा एक अजीब जुमला इरशाद फरमाते हैं, या लतारातुल हुसैन का शियार देखिएगा कि कहाँ से ये सिलसिला चला आ रहा है और कौन कौन इमाम जमाना के साथ इस शियार को बुलंद करेगा। तवज्जो कीजिएगा, एक मौके पर इमाम रजा, रोजे अरबाइन है ना, एक मौके पर इमाम रजा इब्ने शबीब को मुखातिब करके कहते हैं, यब्न शबीब इन सर्रका अन चकूना फिल गुरफिल मबनियते लना। अल्लाह अकबर। ए फरजंद शबीब, अगर तुम इस बात को चाहो कि रोजे कयामत जन्नत में उन कमरों में हो, उन गुरफों में हो कि जो आले मोहम्मद के लिए बनाए गए हैं, क्या इससे बढ़कर भी कोई ख्वाहिश हो सकती है किसी के दिल में? अगर तुम चाहो कि आले मोहम्मद के लिए तामीर शुदा गुरफों में हो रोजे कयामत जन्नत में, तो क्या करो? बहुत आसान सा अमल, अजादारो इस रोजे अरबईन की मजलिस से उठो तो अपनी आदत बनाकर उठना, जब कभी हुसैन याद आ जाए, जब कभी ठंडा पानी नसीब हो जाए, क्या कहना? इमाम रिजा फरमाते हैं, मचा मा जकर तल हुसैन, जब हुसैन को याद करो एक जुमला कहो फकत, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूजा माक, ए हुसैन काश मैं आपके साथ होता तो मैं कामयाब हो जाता। अल्लाह अकबर, यहां तक रिवायत आ गई। अब इसके बाद इमाम रिजा फरजंद शबीब को एक अजीब तारीखी नुक्ते से आगाह करते हैं, और वो नुक्ता क्या है? इमाम रिजा फरमाते हैं, कह इब्ने शबीब, जब रोजे आशूर था, असरे आशूर करीब आया, हुसैन तन्हा हो गए, हुसैन ने सदा व इस्तगासा बुलंद की, हल मिन दाब बिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है जो रसूल अल्लाह की इतरत की हिफाजत करे, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, क्या कोई है जो हमारी मदद को आए। रिवायत में इमाम रिजा फरमाते हैं, आसमान से 4,000 फरिश्ते जमीन की तरफ आने लगे और उन्होंने नुसरत हुसैन के लिए अल्लाह से इज्न तलब किया। लेकिन करबला का मुआमला ही कुछ ऐसा अजीब मुआमला था कि जो बशर की अकलों से बालतर है। ये मुआमला खुदा और उसके बंदे के दरमियान था। इस इश्क के मुआमले में खुदा को कोई तीसरा गवारा नहीं था। रिवायत के जुमले, उन फरिश्तों को इजाजत ना मिले, वो फरिश्ते वही रुके रहे, यहां तक कि जब असरे आशूर सैयदुश्शहदा को कत्ल कर दिया गया। अब इन फरिश्तों को इज्न दुखूल मिला है, ये फरिश्ते करबला में उतरे हैं, तो अब इन फरिश्तों ने मंजर देखा कि इमाम हुसैन जमीने करबला पर है। क्या ये फरिश्ते देखकर वापस चले गए? नहीं, इमाम रिजा फरमाते हैं, या लतारातुल हुसैन देखिएगा, इमाम रिजा फरमाते हैं कि ये फरिश्ते रोजे, ये 4,000 फरिश्ते खास तौर से रोजे कयामत तक हुसैन की कब्र के गिर्द बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं? यबकूना अलल हुसैन, ये हुसैन पर गिरिया करते रहते हैं। और क्या करते हैं? वयस्तगफिरूना लिशियातिही वजुवारे, हुसैन के जायरों और शियाओं के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। मासूम की दुआ रद्द तो नहीं होती ना? और इन फरिश्तों की हालत क्या है? वहुम शुआतुन गुबर, ये फरिश्ते अपने आप को गुबार आलूद हालत में ढाले हुए हैं। अभी मैं मसाइब से बहुत दूर हूं। इमाम रिजा फरमाते हैं, फइदा काम कायमुना, जब हमारे कायम जहूर फरमाएंगे तो ये फरिश्ते कायम के लश्कर में शामिल होकर हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेंगे। और इन फरिश्तों का शियार ये होगा, या लसारातिल हुसैन, हम हुसैन का इंतकाम लेने वाले हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। बात वादे हो रही है, गुफ्तगु किस कदर गहराई में जा रही है। आज मुझे वक्त की कैद से आजाद रखिएगा, बहुत मतालिब है जो आज पेश करने हैं रोजे अरबाइन की मुनासिबत से। अल्लाह अकबर, यहां तक बात आ गई। अब यहां सवाल ये उठता है कि इमाम हुसैन का कत्ल तो 61 हिजरी में हो गया। मैंने इब्तदाई मजालिस में भी इस सवाल की तरफ इशारा किया था, अगर सामेईन के अधान में महफूज हो। आज वो दिन है कि जब इस सवाल का जवाब पेश करना है। इमाम हुसैन का कत्ल तो सन 61 हिजरी में हो गया, इमाम कायम कब जहूर फरमाएंगे किसी को मालूम नहीं है, कातिलीन हुसैन तो सब के सब वासिले जहन्नम हो चुके। तो अब जब इमाम जमाना तशरीफ लाएंगे तो ये इंतकाम हुसैन किससे लिया जाएगा? सवाल वैलिड है ना, बात जहन में उठती है ना, क्या एतराज करने वाला एतराज तो कर सकता है ना? अजीजों तवज्जो कीजिएगा, ये सवाल है, अब इसका जवाब सुनिए। रिवायत के अजीब जुमले हैं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ता चला जाऊं। एक रिवायत है, बहुत तफसीली है, मैं वक्त की गुंजाइश की वजह से इंतहाई मुख्तसर करता चला जाऊं। रिवायत है मेरे मौला व आका इमाम सज्जाद से, और वो फरमाते हैं कि इन अबिल हुसैन मा नजला मंजिलन, मेरे बाबा हुसैन जब मदीने से करबला का सफर फरमा रहे थे तो हर हर मंजिल पे जब कयाम फरमाते और हर हर मंजिल से जब सफर इब्तिदा करते, इल्ला ज़करा यहया बिन ज़करिया, इमाम हुसैन अल्लाह के नबी यहया बिन ज़करिया को याद करते। अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है, कि इमाम हुसैन का नबी अल्लाह यहया से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर अंबिया में किसी की मजलूमियत सबसे ज्यादा इमाम हुसैन से मुशाबे है तो वो नबी अल्लाह यहया की मजलूमियत है। इमाम हुसैन हर जगह नबी अल्लाह यहया का तज़किरा करते, बहुत खुलासा बहुत ही तफसीली रिवायत है कि उस दौर के बादशाह ने एक बागिया एक बदकमाश खातून के झांसे में आकर धोखे में आकर नबी अल्लाह यहया को नाहक कत्ल कर दिया। नतीजा ये हुआ, खुदा ने उस बादशाह पर उस मुल्क पर अदाब नाजिल किया, एक जालिम बादशाह उन पर हाकिम हो गया। ये पूरी रिवायत इमाम हुसैन से है, कोई चाहे तो बिहारुल अनवार में जाकर पढ़ लीजिएगा, तफसील से मौजूद है। खुदा ने जालिम बादशाह को उस कौम पर मुसल्लत किया, उस बादशाह ने खूब कत्ल गारत गरी की, उस शहर को लूटा, लेकिन इसके बावजूद शहर में एक मसला बाकी रहा। वो मसला क्या था कि नबी अल्लाह यहया का खून, के जो खून नाहक था, के जो हुज्जत खुदा को बेजुर्म बेखता कत्ल किया गया था, जिबा किया गया था, उस शहर में नबी अल्लाह यहया का खून जोश मारता रहता था। एक तवील अरसा गुजर गया, लोग आते उस खून पर मिट्टी डालते, लेकिन ये खून ताजा हो जाता। ये इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं। यहां तक कि बादशाह ने उस कौम उस मुल्क की एक बहुत ही तजर्बेकार एक बहुत ही उम्र रसीदा खातून को अपने दरबार में तलब किया और उससे मशवरा किया कि क्या किया जाए कि ये खून यहया का जोश खत्म हो जाए, ये खून नाहक ठंडा हो जाए। जानते हो बुढ़िया ने क्या कहा, उस खातून ने क्या जवाब दिया? उसने बादशाह को बताया कि बादशाह ये किसी आम इंसान का खून नहीं है, ये नबी खुदा वली खुदा का खून है, ये हरगिज ठंडा नहीं होगा जब तक इसका इंतकाम ना ले लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, सवाल याद रखिएगा जहन में, मैं नतीजे तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जब तक इस पर खून ना बहाया जाए, जब तक इसका इंतकाम ना लिया जाए, ये खून इसी तरह जोश मारता रहेगा। रिवायत में इमाम हुसैन बताते हैं कि वो बादशाह जालिम के जिसका नाम बख्तुन नसर था, उस इलाके के 70,000 लोगों को मर्दों को कत्ल किया, जब जाकर खून यहया का जोश खत्म हुआ, खून यहया ठंडा हुआ। इसके बाद इमाम हुसैन अपने बेटे सैयद सज्जाद को मुखातिब करते, नहीं मालूम क्या हिकमत इमाम है, क्यों इमाम हुसैन ये बातें अपने बेटे सैयद सज्जाद को करबला की राह में बता रहे हैं? शायद ढारस बंधाना चाहते हैं, शायद हौसला देना चाहते हैं, उम्मीद बांधना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, फरमाते वल्लाही या वलदी या अली, ए मेरे बेटे अली इब्न हुसैन, खुदा की कसम, व इन दमी सयगली, मेरा खून भी जोश मारता रहेगा, हत्ता यजहरा कायम मिन वल्दी, यहां तक कि मेरी नस्ल में से कायम मेहदी तशरीफ लाएंगे, व यख्तलू 70 अल्फ रजुलन मिन अल मुनाफिकिन वल कफरत वल फसका, यहां तक कि मेरे इंतकाम के लिए मेरे बेटे कायम तशरीफ लाएंगे और 70,000 काफिरों मुनाफिकों और फासिकों को इस खून के इंतकाम में कत्ल करेंगे। अल्लाह अकबर, मेरा आपसे सवाल है, क्या हुसैन का खून आज भी जोश नहीं मार रहा? क्या आज भी वो मोजजात आप नहीं देखते? क्या असर आशूर खाके शिफा खून में तब्दील हो जाती है? क्या हलब में आज भी वो पत्थर मौजूद नहीं है कि जहां से आज भी ताजा खून बरामद होता है? लोगों ने बहुत साफ किया, लोगों ने मिटाने की छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन यह हुसैन का खून आज भी जोश मार रहा है। अल्लाह अकबर, यहां तक मेरे साथ सफर करके आ गए अजीजों, लिहाजा खून हुसैन उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा तब तक जब तक इसके इंतकाम में 70,000 लोगों को कत्ल ना कर दिया जाए। इस रिवायत से नतीजा क्या निकला, हम मरहला दर मरहला मंजिल ब मंजिल अपने जवाब की तरफ जा रहे हैं। इस रिवायत से नतीजा क्या निकला कि इमाम जमाना जब तशरीफ लाएंगे तो अपने जद हुसैन के खून के इंतकाम के लिए 70,000 लोगों को, काफिरों फासिकों और मुनाफिकों को कत्ल करेंगे। बुनियादी सवाल अभी भी अपनी जगह बाकी है कि इन 70,000 का कातिलीन हुसैन से क्या ताल्लुक है, इन्हें क्यों हुसैन के कत्ल के इंतकाम में कत्ल किया जा रहा है, सवाल बाकी है ना। इसका जवाब हमारे छठे सरकार हजरत सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। जब रावी ने पूछा मौला जब हजरत हुज्जत जहूर फरमाएंगे तो किससे हुसैन के खून का इंतकाम लेंगे, अजीब जुमले हैं इमाम सादिक के, फरमाते हैं यख्तुलू मिन जरारी या यंतकिमू मिन जरारी कतलतिल हुसैन। जरारी जमा है जुर्रियत की और जुर्रियत अरबी में कहते हैं नस्ल को। छठे इमाम बता रहे हैं कि जब हजरत कायम तशरीफ लाएंगे तो हुसैन के खून का इंतकाम किससे लेंगे, कातिलीन हुसैन की नस्लों से, उनकी जुर्रियतों से लेंगे। अल्लाहु अकबर, बुनियादी सवाल अभी भी बाकी है और ये सवाल लेकर रावी अबा सलते हरवी आठवें आका सुल्तान अरब व अजम की बारगाह में आता है, सवाल करता है फरजंद रसूल क्या आपके जद छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद ने यह फरमाया है कि कायम आले मोहम्मद कातिलीन हुसैन की नस्लों से खून हुसैन का इंतकाम लेंगे। छठे इमाम फरमाते हैं सदक जद्दी, मेरे जद ने सच कहा है। अब रावी अबासलत है, कोई आम शख्स नहीं है, कोई आम सहाबी नहीं है, फौरन से कुरान की आयत को पेश किया, मौला कुरान तो कहता है वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्रा उख़रा, किसी एक इंसान पर दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं डाला जाएगा। इमाम रिजा फरमाते हैं सदक अल्लाह फी जमी अक़वाले, खुदा की हर आयत सच्ची है। तो सवाल करता है रावी मौला फिर कातिलीन हुसैन का बदला उनकी नस्लों से क्यों लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, यहां इस्लाम का एक बड़ा ही कुल्ली और बुनियादी कायदा, यहां हमारे सवाल का जवाब मेरे आठवें इमाम के लबहाए अथर से मिल रहा है। मेरे आठवें मौला फरमाते हैं ले अन्न जरारी कतलतिल हुसैन कद रदु बिफ़िल आबाहिम वकानु यफ्तखिरून बिहिम। अरे हुसैन के कातिलों की नस्लों का जुर्म यह था कि ये अपने अजदाद के फेल पर राजी रहे, न सिर्फ राजी रहे बल्कि अपने अजदाद के इस काम पर फख्र किया करते थे। और फिर इमाम रिजा फरमाते हैं खुदा का कायदा यह है कि अगर दुनिया के मगरिब में वेस्ट में किसी को कत्ल कर दिया जाए और मशरिक में बैठा हुआ कोई शख्स उस कत्ल से राजी हो फकअन्नहु मिनल कातिलीन, तो गोया ये मगरिब में मशरिक में बैठा हुआ शख्स भी गोया मुबाशरतन बगैर वास्ते के उन कातिलों में शामिल है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, बात पहुंच रही है। यहां पर गुफ्तगू बड़ी ही नाजुक मरहले में आ गई है, लिहाजा मैं बगैर किसी फुटनोट के, बगैर किसी हाशिए के बात को इस मंजिल से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो नुक्ता, वो दूसरा ताल्लुक इमाम हुसैन और मेरे वक्त के इमाम में क्या है कि इमाम जमाना ही मुंतकिम खून हुसैन है। और ये काम अपने लिए अपनी जानिब से नहीं कर रहे बल हकीकत ये कार खुदाई है कि जो मेरे आका इमाम जमाना के हाथों अंजाम पाना है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज रोजे अरबाइन सैयदुश्शहदा है, आज मसाइब भी यकीनन तवील होंगे। हर दिल जो यहां बैठा है या जो हमें सुन रहा है वो आज के दिन मसाइब सुनने के लिए आमादा है, रोने के लिए आमादा है। लेकिन उससे पहले चंद जुमले हुसैन की फजीलत और हुसैन के मकाम को समझाने के लिए, और यहीं से मैं तीसरे नुक्ते में दाखिल हो जाऊंगा अपनी गुफ्तगू के कि हजरत हुसैन में और इमाम कायम में क्या ताल्लुक है। बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, इस ताल्लुक को समझने के लिए थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू। और वो तमहीदी गुफ्तगू क्या है कि जब हुज्जत खुदा का खून नाहक का पहला कचरा जमीन करबला पर गिरा, इमाम वक्त को जब बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो क्या ये मंजर, क्या ये जुल्म इंसानों की तरह ये पूरी कायनात खामोश रहकर देख रही थी? क्या इस कायनात पर कोई रद्द अमल आया? वो इमाम मासूम, वो हुज्जत खुदा, तवज्जो कीजिएगा, इमाम मासूम इस पूरी कायनात और खिलकत का मरकजी नुक्ता हुआ करता है कि अगर तमाम मखलूकात को हयात मिल रही है तो इनके सदके में, इनके वजूद की बरकत से मिल रही है। एक मिसाल से बात को आसान कर दूं, इमाम की मिसाल इस कायनात की निस्बत से वैसी ही होती है जैसी इंसान की निस्बत से उसकी नब्ज की होती है। जब तक नब्ज चल रही है इंसान जिंदा है, इसी तरह इमाम मासूम इस कायनात की नब्ज हुआ करता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर रहे हैं। ये हुसैन का कत्ल, ये वली खुदा, ये हुज्जत खुदा का खून, क्या ये कोई मामूली जुर्म था? क्या किसी खलकत को कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं अजीजों, अजीब रिवायात है हमारे पास, तो रिवायात भरी पड़ी है। चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे परिंद हो, चाहे चरिंद हो, चाहे हैवानात हो, चाहे नबातात हो, चाहे जमादात हो, चाहे दरिंदे हो, चाहे समंदर हो, चाहे पहाड़ हो, या चाहे समंदर में रहने वाली मछलियां हो, चाहे चांद हो या चाहे सूरज हो, अलगरज ये कायनात की हर हर खिलकत पर कत्ले हुसैन का असर पड़ा, हर हर खिलकत मुतासिर हुई। हमारे पास तो रिवायात भरी हुई है। छठे इमाम के जुमले हैं कि कत्ले हुसैन पर जमीनों आसमान रोए, चरिंदों परिंद रोए, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, हत्ता के समंदर में रहने वाली मछलियों ने भी गिरिया किया। ये सारी मखलूक कत्ले हुसैन पर फरियाद कर रही थी। हाँ, हर मखलूक के गिरिए की कैफियत कुछ मुख्तलिफ थी। अब यहां कोई सवाल करेगा ना, ये कौन सी बात हो रही है, ये कहां की बात हो रही है, ये बात तो लोगों की अक्ल में नहीं आती, तो मैं उनके लिए कुरान की फकत एक आयत पेश करूंगा। कुरान की आयत कहती है कि ये जितनी मखलूक खुदा है, युसब्बिहूनल्लाह, ये सब की सब अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये पहाड़, ये दरिया, ये सूरज, ये चांद, ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। लेकिन खुदा आगे एक जुमला इरशाद फरमाता है, वलाकिन ला तफकहूना तस्बीहहुम। अरे तुम्हें इनकी तस्बीह की कैफियत समझ नहीं आती है। बड़ी आसान सी बात कहूंगा, जिस दिन आपको इस कायनात की तस्बीह समझ आ जाएगी, उसी दिन इस कायनात का हुसैन पर गिरिया भी समझ आ जाएगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान से एक और दलील पेश कर दूं अजीजों। कुरान में सूरह दुखान, हर शबे कदर में मोमिनीन तिलावत करते हैं। सूरह दुखान में जब काफिरों का तذکرہ आया, जब कुछ लोगों का तذکرہ आया, तो कुरान कहता है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मोमिनीन। फिर उन लोगों के चले जाने पर, उन लोगों के मर जाने पर, ना आसमान रोया न जमीन रोई। इसका मफहूम है मुखालिफत उलमा यही निकालते हैं, इसका मतलब कुछ हस्तियां हैं कायनात में ऐसी कि जिनके चले जाने पर आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, रोजे अरबाईन है, इन मतालिब को बर्दाश्त करें, इन मतालिब को हजम करें। जानिए ये हुसैन का मकाम है, ये हुसैन के वो फजाइल हैं कि जिनमें हुसैन के मसाइब भी पोशीदा हैं। हर हर मखलूक ने हुसैन पर गिरिया किया, हर हर मखलूक ने फरियाद की, हर हर मखलूक ने कातिलीन हुसैन के लिए बद्दुआ की। हाँ, हर मखलूक के रोने की कैफियत मुख्तलिफ थी। समंदर कैसे रोए? समंदरों में हिजान आ गया, समंदरों की लहरें बिफर गई। हवा कैसे रोई? सुर्ख और सियाह आंधियां चलने लगी। जमीन कैसे रोई? फकत हमारी किताबों में नहीं है, हमारी तो रिवायात भरी पड़ी है इस किस्म की, अहादीस शरीफा से, बरादरान के कुतुब से पढ़ा हूं। फकत एक किताब हवाले के तौर पर मैंने नौजवान ले जाइए, बरादरान की कदीम तरीन कुतुब में से तबकात इब्ने साद, बड़ा ही मशहूर ना। उन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को लिखा, रावी कहता है कि जब हुसैन का कत्ल किया गया तो 40 दिन तक, एक दो दिन तक नहीं, ये अरबाइन का मौका, ये अरबाइन की अहमियत, ये अरबाइन की हिकमत और फलसफे को समझिएगा। रावी कहता है, हमारा रावी नहीं है, हमारी किताब नहीं है, रावी कहता है कत्ले हुसैन के बाद 40 दिनों तक मा रफाना हजरन इला बैतुल मक़दस। इराक तो छोड़िए, यमनो शामो फलस्तीन बैतुल मुकद्दस तक जब भी कोई पत्थर उठाया गया, इल्ला व वजदना तहतहू दमन अबीद, हर हर पत्थर के नीचे ताजा ठाठे मारता हुआ, जोश मारता हुआ खून बरामद हुआ। तवज्जो कर रहे हैं, सूरज ने कैसे गिरिया किया? 40 दिन तक, रिवायत के जुमले हमारे यहां भी है, बरादरान के यहां भी है, 40 दिन तक सूरज को ऐसा मुकम्मल ग्रहण लगा रहा कि रावी कहता है हमें दिन के वक्त में तारे नजर आते थे। अल्लाह अकबर। आसमान ने गिरिया किया, कैसे गिरिया किया, ऐसा सुर्ख हो गया कि हमें ऐसा लगता था, रावी कह रहा है हमें ऐसा लगता था कि कामतिल कयामा के बस अब रोजे कयामत करीब है। ये मखलूक का हुज्जते खुदा से ताल्लुक है, हुज्जते खुदा कायनात की नब्ज हुआ करती है। ये कैसे हो सकता है कि हुज्जते खुदा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और इस जमीन और आसमान, इस कायनात पर, इस वफादार मखलूक पर कोई असर ना आए। अल्लाह अकबर। रिवायात के जुमले हैं, वह बकत इस समा हुआ सुकान हुआ, आसमान आका हुसैन पर रोया। कैसे रोया? हमारे यहां भी जुमले हैं, बरादरान के यहां भी ये तारीखी शवाहिद मौजूद हैं, कत्ले सैयदुश्शहदा के बाद 40 दिन तक, मेरा मौजूद तो जहन में है ना, हजरत हुज्जत और आका हुसैन का ताल्लुक, जरा ये अजीब ताल्लुक महसूस तो कीजिएगा रिवायत आले मोहम्मद की रोशनी में, अभी तमहीद पेश कर रहा हूं। रिवायात के जुमले हैं, आसमान कैसे रोया, मुतरना दमन अरबाइना यौमन बाद कत्ल हुसैन, हुसैन के कत्ल के बाद 40 दिनों तक आसमान से खून बरसता रहा। अल्लाह अकबर। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, बात की गहराई का अंदाजा कर रहे हैं। अरे अरब मुअर्रखीन को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान मुअर्रखीन और मुहद्दिसीन को तो छोड़ दीजिए, क्या पूरी दुनिया में यह माजरा हुआ G61 हिजरी के रोजे आशूर? पूरी दुनिया में, चाहे वो ये एशिया का बर्रे आजम हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, पूरी दुनिया में 40 दिन तक आसमान से खून बरसा है। अल्लाह अकबर। हवाला पेश कर दूं मेरे नौजवानों के लिए, एक ब्रिटिश मुअर्रिख है, हिस्टोरियन है, अंग्रेज मुअर्रिख है, कि जिसने 1952 के करीब एक तारीखी किताब लिखी, कि जिस किताब का नाम, मेरे नौजवानों के लिए होमवर्क देकर जा रहा हूं, आजकल किसी चीज को तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है, फकत जाकर गूगल पे एक फहस कीजिएगा, एक सर्च कीजिएगा, सारे नताइज हुसैन की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील आपके हवाले कर रहा हूं। गैर अकवाम की जबानी के जो अरब ममालिक तो छोड़िए, एशिया के बर्रे आजम से जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिनको कुछ गुमान नहीं था कि दुनिया की दूसरी सिमत क्या हो रहा है, उस मुअर्रिख की जुबानी पेश कर रहा हूं। एक मुअर्रिख है, ब्रितानिया का मुअर्रिख है, उसने 1952 में एक किताब लिखी और इस किताब का नाम रखा, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, किताब का नाम पेश कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, किताब का नाम गूगल पर सर्च कीजिएगा। ये एंग्लो सैक्सन क्या है? ये बरतानवी कदीम तारीख में खास टाइम पीरियड को, एक खास जमाने को कहा जाता है। हुसैन की हक्कानियत पर दलील पेश कर रहा हूं, मुझे किसी मुस्लिम मौर्रिख की किताब से दलील देने की जरूरत नहीं रहेगी अजीजों। एंग्लो सैक्सन पीरियड एक कदीम तारीखी दौर है ब्रिटानिया की तारीख का, उनके जमाने का, कि जो कब से कब तक का दौर है। अभी हम 2020 में, 2020 एडी में बैठे हैं ना अजीजों, तवज्जो कीजिएगा। ये किस दौर को कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड? ये कहा जाता है सन 411 ईस्वी से सन 1066, 411 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक का दौर, इस दौर को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तफसील आप खुद तलाश कर लीजिएगा। इस जमाने में, आज कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा ईस्वी बरस चल रहा है, 2020, सन 400 से 1000 तक, आज से कितने साल पुरानी बात है, तकरीबन 1000-1500 साल पुरानी बात है। इस मौर्रिख ने, कि जो 1952 में जिसने किताब लिखी, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स कहते हैं कदीमी अंग्रेजी जुबान में वाकयात को, किस्सों को, इस मौर्रिख ने उस जमाने के जो हर हर साल के मशहूर वाकयात और हालात गुजरे, कि जो बहुत ही ज्यादा मुअसर हालात थे, कि जिन्होंने दुनिया में एक तब्दीली दी, उन तमाम हालात वाकयात को अपनी इस किताब में जमा किया है। सन 600 सन 411 से 1066 हिजरी तक। तवज्जो कर रहे हैं, ये मुकदमा साजी जरूरी है, कोई हवाई बात नहीं की जा रही है, हवालों के साथ बात की जा रही है, तवज्जो कीजिएगा। इस शख्स ने तमाम हर हर साल के अहम तरीन वाकयात को लिखा, अहम तरीन जंगों को, कौन सा बादशाह कब मर गया, उसकी जगह कौन से बादशाह की हुकूमत आई, इसने इन तमाम वाकयात को दो दो जुमलों में, जाहिर है 1500 साल पुरानी तारीख है, कोई बहुत ज्यादा तारीखी शवाहिद महफूज तो नहीं है, लेकिन जो अहम तरीन वाकयात थे कि जो 1400 साल बाद भी जिनका जिक्र जिंदा रहा, उन्हें अपनी इस किताब में लिखा। इस किताब में जब ये सन 685 ईस्वी 685 AD के जिक्र पर आता है तो अजीब जुमले लिखता है, कहता है इस साल, अब मैंने किताब का हवाला दे दिया, मुअर्रिख का नाम, किताब का नाम बता दिया, सने सने ईस्वी बता दिया, खुद नौजवान तलाश कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी किताब में लिखता है कि सन 685 हिजरी का एक सबसे बड़ा वाकया और हादसा यह था कि इस साल एक रोज आसमान से खून की बारिश हुई, यहां तक के लोगों की जितनी अशिया थी कि जो जामिद नहीं थी, कि जो लिक्विड थी, वो सब की सब सुर्ख रंग में या खून में तब्दील हो गई। अगर आप आज भी हिसाब लगाइए तो सन 685 ईस्वी अगर इसे इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुकाबले में रखा जाए तो ये 61 हिजरी बनता है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज मुअर्रिख उस दौर के मुअर्रिखीन से नकल कर रहा है कि अरब इलाके तो छोड़िए, फलस्तीन तो छोड़िए, शाम और इराक तो छोड़िए, मक्का व मदीना, हिजाज मुकद्दसा तो छोड़िए, उस इलाके में भी उस साल आसमान से खून बरसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो कर रहे हैं, ये खून हुसैन के असरात थे। हमारे अइम्मा की रिवायात में तो कसरत से ये जुमले पाए जाते हैं, छठे इमाम अपने जब हुसैन को मुखातब करके क्या कहते हैं, ज्यारत मुतलका है, इमाम हुसैन की मुतलका ज्यारात में से एक ज्यारत है कि जो किसी भी दिन पढ़ी जा सकती है, अशहदु अन्ना दमका सकना फिल खुल्द। ये खून हुसैन कोई मामूली खून नहीं था, मैं गवाही देता हूं कि आपका खून भी खुल्द बरी में मस्कून है। अल्लाह अकबर। जिसका खून जन्नतुल फिरदौस में साकिन हो, उसकी रूह तय्यबा का आलम क्या होगा। फिर इमाम अजीब जुमले फरमाते हैं, ये तो फकत जमीनों आसमान की बातें हुई ना, वो जो अर्श की मखलूक है वो अर्श की बातें बताती है। फरमाते वक्शअर्रत भी अदिल्लतुल अर्श, ए हुसैन आपके कत्ल से अर्श के पाए मुतजलजल हो गए, अर्श खुदा में तजबजुब आ गया। अल्लाह अकबर। तवज्जो कर रहे हैं ये आले मोहम्मद। अब यहां लोग एक एतराज करते हैं कि सबसे पहले जिस मौर्रिख ने इस वाकये को कि आसमान से कत्ल हुसैन के बाद खून बरसा, इस वाकये को सबसे पहले मौर्रिख, जिस मौर्रिख ने अपनी किताब में लिखा, अरब मौर्रिख, वो वाकया करबला के 200 साल बाद का मौर्रिख है, तो कैसे उसकी बात पर यकीन किया जाए, 200 साल का फासला है बीच में। अगरचे उसकी बात पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी चले उस मौर्रिख को भी छोड़ दिए, छोड़ दीजिए। जानते हैं सबसे पहले इस तारीखी हकीकत पर से किसने पर्दा उठाया और सन 61 हिजरी में ही उठाया, वो कौन सी हस्ती है, वो अली की शहजादी ज़ैनब उलिया सलामुल्लाह अलैहा की जात है। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, कत्ले हुसैन के बाद पूरी कायनात में एक अजीब तासुर आ गया, एक अजीब तजब्जुब आ गया, मखलूक खुदावंदी, ये सारी की सारी कायनात लरज उठी, हर हर कौन, हर हर मखलूक पर असर आया, हर हर मखलूक बद्दुआ कर रही थी, खुदा ये जो उम्मत है जिसने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, तू इसे हलाक क्यों नहीं कर देता। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तारीख में अगर किसी ने इस हकीकत पर से पर्दा उठाया कि कत्ल हुसैन के दिन आसमान से खून बरसा है, तो वो मेरी शहजादी ज़ैनब उलिया है। सुनना चाहेंगे अजीजों, तवज्जोहात मेरे साथ है, शहजादी ज़ैनब उलिया जब इन शहजादियों का काफिला असीर बनाकर शहर कूफा में दाखिल किया गया, तो कूफे के बाजार में शहजादी ने खुतबा दिया है, और खुतबात ज़ैनबिया खुद एक मुस्तकिल मौजू है, तौफीक रही तो फिर कभी पेश करूंगा, लेकिन फकत इस एक खुतबे के चंद जुमलों को सुनते जाइएगा। कूफे का बाजार है, शहजादियां असीरी में है, रावी है इस्माइल बिन राशिद, कहता है वल्लाही मा रअईतु इमरातन कत्तु अंतका मिनहा, खुदा की कसम मैंने कभी किसी मुअज्जमा खातून को नहीं देखा कि जो कैदो बंद में हो, कि जिसके शाने रस्सियों से बंधे हुए हो, लेकिन इसके बावजूद इस कदर बलागत और तलाकत से कलाम कर रही हो। अल्लाह अकबर, रावी के जुमले हैं, वकअन्नहा तुफ्रिगु अन लिसान अबीहा अमीरुल मोमिनीन, गोया अली की बेटी अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन के लहजे में कलाम कर रही है। अब इसके बाद रावी के जुमले हैं, फलम्मा अरादतिल कलाम औ मअत इलैहिम अन इस्कुतु, अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान हो जाऊं, शहजादी ज़ैनब उलिया के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है ये, खुद बात सुनना चाहेंगे ना अजीजों, तवज्जोहात मेरे साथ रखिएगा। आपने अक्सर शुआरा के कलाम में सुना होगा कि तूने उस्कुत जो कहा हो गए आधा खामोश। शौरा क्या कहते हैं शहजादी के बारे में, उनकी फजीलत को वस्त को बयान करते हुए, तूने उस्कुत जो कहा, उसको तो कहते हैं खामोश हो जाओ को अरबी जुबान में, तूने उसको तो जो कहा हो गए आधा खामोश। शोरा का बड़ा एहतराम है, बड़ा मकाम है, लेकिन अजीजों तवज्जो कीजिएगा, रिवायत के जुमले इससे बढ़कर हैं। रिवायत कहती है वा औमा अच इलैहिम अनिस्कुतू, मेरी शहजादी ने उसको तो कहा नहीं था, फकत इशारा किया था खामोश हो जाने का। रावी कहता है फसकनतिल अनफासुल अस्वाद, अरे तमाम लोगों की आवाजें खामोश हो गई, आवाजें तो छोड़िए, किसी के सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही। तवज्जो कर रहे हैं, अभी अली की शहजादी ने फकत इशारा किया था, अगर उसको कह देती तो मौजूद लोगों की नस्लें गूंगी हो जाती। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली की शहजादी, अली के लहजे में बाजार कूफा में, अब मैं क्या करूं, ये मसाइब भी हैं, ये फजाइल भी हैं शहजादी के, बाजार कूफा में खिताब फरमा रही हैं। सबसे पहले उस हकीकत पर से शहजादी ने यहां पर्दा उठाया, जब तमाम मखलूकात खामोश हो गई, साकित हो गई, उस वक्त शहजादी ने लहजे अलविया में बलागत जैनबिया का इजहार किया और फरमाने लगी वैलकुम, ए लोगों तुम पर वाय हो, निफरीन हो, अय्या कबिदिन, तवज्जो कीजिएगा, खून हुसैन का मकाम क्या है, किस अजीम हस्ती का कत्ल हुआ है, अय्या कबिदिन ले रसूलिल्लाह फरैतुम, अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है तुमने रसूल खुदा के किस कलेजे को पाश पाश कर दिया, वह अय्या दमिल लहू सफकतुम, अरे तुमने रसूल के किस खून को बहा दिया। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद शहजादी ने कुरान से सूरह मरियम की आयतों को पेश किया और ये आयतें अपने हक में दलील बनाई, फरमाने लकद जितुम शैअन इद्दा, खुदा की कसम, सूरह मरियम की आयतें कुरान खोल कर देख लेना, खुदा की कसम तुमने बड़ा ही अजीम जुर्म किया है। इस जुर्म की कैफियत क्या है, कुरान की अगली आयत पढ़ी, तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु, अरे करीब है कि तुम्हारे इस जुल्म अजीम से, ये जो तुमने हुसैन के खून को बहाया है, इस जुल्म से करीब है, बाइद नहीं है कि आसमान फट जाए, व तनशक्कुल अर्ज, जमीने फट जाए, व तफिरुल जिबालु हद्दा, और ये जो मजबूत पहाड़ हैं ये रूई के गालों की तरह उड़ जाए। अब इसके बाद मेरी शहजादी अहले कूफा को मुखातिब करके कहती है अफा अजिब तुम अन मतरत समाओ दमा, अरे क्या तुम्हें ताज्जुब तो नहीं हुआ कि कत्ले हुसैन के बाद आसमान ने खून बरसाया था। मेरा आपसे सवाल है, ये किस हिजरी का वाकया है, 61 हिजरी का ही वाकया है ना, शहजादियों को असीर बनाकर कूफा लाया गया था, कोई ज्यादा दूर की बात तो नहीं थी, बहुत से लोग भी थे ना कि जो करबला में भी मौजूद थे, अगर खून ना बरसा होता तो कोई उठकर सवाल कर लेता है शहजादी ये कहां की बात कर रही है। किसी ने सवाल न किया, किसी का सवाल न करना इस बात पर सबसे बड़ी दलील है, और ये सबसे पहली दलील है तारीखी एतबार से इस वाकये पर कि कत्ले हुसैन के बाद आसमान से खून बरसा था। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, अब जहां से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, यहां तक का नतीजा क्या हुआ कि कत्ले हुसैन से तमाम कायनात मुतासिर हुई, हर हर मखलूक के आलम पर असर आया, अपने अपने एतबार से असर आया, अगर नहीं आया तो एक जालिम इब्ने आदम था कि जिसके ऊपर कोई असर नहीं आया। यहां से मैं बात को एक मंजिल आगे बढ़ाता हूं, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। قتل حسین ہر ہر مخلوق تیش میں تھی، ہر ہر مخلوق غضب میں تھی، کسی مخلوق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ نواسۂ رسول کو بے جرم و بے خطا قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں کی حالت، ابھی آپ نے زمین و آسمان و عرش و فرش کی حالت سن لی نا، اب ذرا سنیے فرشتوں، مقرب فرشتوں کی حالت کیا تھی، معصوم فرشتوں کی حالت کیا تھی، روایت کے جملے وَلَقَدْ زَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ، ارے فرشتے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، ادھر لعین حسین کو قتل کر رہا ہے، ادھر فرشتے تیش اور غضب میں ہیں اور خدا سے بار بار یہ بد یہ دعا کر رہے ہیں، اے خدا تو ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم ابھی زمین پر نازل ہو اور یہ ساری کی ساری انسانیت کو عذاب کا شکار بنا لے، وہ انسان کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جس نے فاطمہ کے جگر گوشے کو قتل کر دیا، اسے اب اس روح زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، خدا کی جانب سے فرشتوں کو اجازت نہیں گئی، اب جانتے ہو فرشتوں نے اپنے غضب کو کیسے قابو میں کیا، روایت کے عجیب جملے ہیں، ادھر لعین حسین کے گلو اقدس پر خنجر چلا رہا تھا، یہ فضائے بھی ہیں مسائب بھی ہیں، میں کیا کروں، روزے اربعین ہے، بہت سی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کھل کے گریہ کیجئے، خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ابھی میں مسائب کے نزدیک تر آ چکا ہوں عزیزوں، روایت کے عجیب جملے ہیں، ادھر سے لعین حسین کے گلو اقدس پر خنجر چلا رہا ہے، ادھر سے ملائکہ زمین و آسمان غضب کے عالم میں ہے، خدا کی جانب سے انہیں اذن نہیں مل رہا، اجازت نہیں ملتی کہ ابھی انہی قاتلوں کو عذاب کا شکار بنا لے، ادھر خنجر چلتا جا رہا ہے، ادھر فرشتے تسبیح خداوندی کر رہے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، ادھر خنجر روا ہے، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، ادھر خنجر چل رہا ہے، ادھر فرشتوں کی تسبیح کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، قریب تھا یہ ساری کائنات تباہ ہو جاتی، قریب تھا کہ یہ فرشتے بکھر جاتے، قریب تھا کہ یہ فرشتے کائنات کو عذاب میں مبتلا کر دیتے، لیکن اس کے باوجود آج 1400 سال گزر گئی، عذاب کیوں نہیں آیا، ابو حمزہ سومالی راوی ہے، بڑا ہی عظیم راوی ہے، پانچویں آقا کی خدمت میں آتا ہے، عجیب سوال کرتا ہے، مولا انتم کلکم قائمین بالحق، مولا آپ سب حق کو قائم کرتے ہیں، فرمایا بلا شک، بغیر کسی شک کے، مولا پھر آپ کے آخری کو قائم کیوں کہا گیا، اللہ اکبر، اب پانچویں امام نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا اور یہاں آقا حسین اور امام زمانہ کا تیسرا ربط واضح ہو جائے گا، اور کیا عظیم اور گہرا ربط ہے یہ عزیزو، پھر یہی اپنی گفتگو کو روک دوں گا، پانچویں آقا فرماتے لم قتل الحسین، جب میرے جد حسین کو کربلا کی تپتی ریت پر قتل کیا جا رہا تھا، وجت الملائکۃ الی اللہ، آسمانی فرشتے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، اے خدا ہمیں اجازت دے ابھی اس مخلوق کو نیست و نابود کر دے، اس انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اسے جینے کا حق نہیں ہے، جانتے ہو خدا نے ان ملائکہ کی تسکین کے لیے، اس پوری کائنات کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا، روایت کے جملے خدا نے ان فرشتوں کے آگے سے نوری حجابوں کو ہٹایا، فرشتوں نے کیا دیکھا، فَنَظَرُوا إِلَى جَانِبِ الْعَرْشِ، فرشتوں نے عرش خدا کے دائیں جانب دیکھا، ایک نور ہے، وَكَانَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ نور حالت قیام میں تھا اور خدا کی عبادت کر رہا تھا، خدا نے فرشتوں کی طرف فرشتوں کو دکھایا، اس نور کی طرف اشارہ کیا، بِهَذَا الْقَائِمِ أَنْتَقِمْ لِصَفْوَتِي، اے فرشتوں غم نہ کرو، صبر کرو، انتظار کرو، یہ جو قائم ہے، یہ جو قیام میں ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے حسین کا انتقام لوں گا، اب جب فرشتوں نے امام زمانہ کے نور کی زیارت کی، روایت کے جملے فسرت الملائکہ، اب جا کر فرشتوں کو چین آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، عزیزوں محسوس کر رہے ہیں حسین اور امام زمانہ کا کتنا عجیب تعلق ہے، کتنا عظیم تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، کہ جب ساری مخلوق قتل حسین پر بکھر چکی تھی تو اس موقع پر خدا نے ساری مخلوق کو جو صبر کرایا، جو ڈھارس بندھائی، وہ میرے وقت کے امام کو دکھا کر بندھائی، لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب غلو حسین پر خنجر چل رہا ہو اور امام زمانہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں، اس وقت ان کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا خدا جانے، یا حسین جانے، یا میرا مولا امام زمانہ جانے. ہاں، اس کیفیت کا اظہار میرے مولا امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں فرما دیا. کیا فرمایا؟ فلئن اخرتنی الدهور وعاقنی عن نصرک المقدور. اے میرے جد حسین، اگر زمانے کے فاصلے نے مجھے آپ سے دور کر دیا، میں آپ کی مدد نہ کر سکا، مجھے اذن خداوندی نہ تھا، ورنہ اسی لحظے عرش سے اتر کر آپ کی نصرت کرتا، تو اب میں روزے قیامت تک جب تک آپ کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لوں میں کیا کروں گا؟ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَاءَ، اے میرے جد حسین، میں آپ پر خون کے آنسو روؤں گا. اللہ، جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے، جانتے ہیں اپنی مخلوق عالم کے سامنے اپنا تعارف کس جملے سے کروائیں گے؟ وارث رسول ہیں، وارث انبیاء ہیں، وارث آل محمد ہیں، لیکن کسی کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کرائیں گے. ایک کانٹا ہے کہ جو امام زمانہ کو اس غیبت میں چبھتا رہتا ہے، ایک ظلم ہے کہ جو امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو تمام مخلوقات عالم کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کیا کہہ کر کرائیں گے؟ یا اہل العالم، یہ چوتھا ربط امام حسین اور امام زمانہ میں، یا اہل العالم، اے دنیا والوں، اے اہل کائنات، انا ابن الحسین، میں اسی حسین کا بیٹا ہوں، الذی قتلوہ عطشانا، کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا. گریے کی صدائیں بلند ہو گئی، روزے اربعین ہیں، مجھے طویل مصائب پڑھنے دیجئے گا، رونے میں نہ شرمانا عزیزوں، عزاداروں. کیا جملے کہہ کر اپنا تعارف کرائیں گے؟ رسول سے نہیں کرا رہے، شہزادی کونین سے نہیں کرا رہے، علی مرتضی سے نہیں کرا رہے، حسن مجتبی سے نہیں کرا رہے، کیا کہہ کر کروا رہے ہیں؟ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا. اللہ اکبر. جانتے ہو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ وہی جملہ ہے کہ جب چوتھے امام 12ویں محرم کو کوفہ کے قید خانے سے اعجاز امامت سے کربلا تشریف لائے تھے نا، اپنے پیاروں کی قبریں بنانے کو، اپنے پیاروں کو دفنانے کو، جب سب کو میرے چوتھے امام نے دفنا لیا، اپنے بابا حسین کی قبر بنا لی، تو میرے چوتھے امام نے اپنی انگشت مبارک سے قبر حسین کی مٹی پر ایک جملہ لکھا تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اسی حسین ابن علی کی قبر ہے کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا قتل کر دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. عزیزوں، شاعر نے کیا عجیب مصرع کہا ہے؟ روزے عاشور کے لیے خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. یہ جو پیاس ہے نا حسین کی، یہ میرے چوتھے امام کے قلب میں بھی کانٹا بن کر چپتی رہی ساری زندگی. یہی وجہ ہے نا کہ جب بھی وضو کے لیے پانی کا ظرف آتا، امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. یہی حسین کی پیاس میرے آخری امام کے قلب اقدس میں کانٹا بن کر چپ رہی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ظہور کے بعد اپنا تعارف حسین کی پیاس سے کروائیں گے. بس عزیزوں، آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب چوتھے امام لوٹ کر اپنے اسی بابا کی قبر پر آنے والے ہیں. حسین کے چہلم کا دن، شہدائے کربلا کے چہلم کا دن. رونے میں شرم نہ کرنا عزاداروں، رونے میں حیا نہ کرنا. شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کے چہلم پر ان کا پرشا پیش کرنا ہے. نہیں معلوم اگلے برس زندگی چہلم منانے کا موقع دے یا نہ دے. میں نے کل کہاں پر مصائب کو روکا تھا، وہیں سے آج بات کا آغاز کروں گا. سنتے جانا، سر کو پیٹتے جانا اور روتے چلے جانا. کربلا والوں کا قافلہ شام سے آزاد ہو کر چلا ہے. راستے میں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، चौथे इमाम फूफी जैनब उलिया को मुखातब करके कहते हैं, फूफी अम्मा यहां से एक रास्ता मदीने को जाता है और दूसरा रास्ता करबला को जाता है। अरे करबला का नाम सुनना था, वो फूफियाँ, वो बेटियां, वो माएँ बहनें के जिनके दिल भरे हुए थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ सैयद सज्जाद, यूं तो आपका हुक्म चलेगा, यूं तो आप इमाम वक्त है, लेकिन हमारी एक आरजू है कि जब करबला से चले थे तो अपने अजीजों के लाशों को बेगौर कफन छोड़ कर आए थे। अरे दिल खोल के लाशों का मातम नहीं किया था, हम चाहते हैं कि अपने अजीजों की कब्र पर अपनी रोने की आरजू को, रोने की प्यास को बुझाए। इधर चौथे इमाम ने काफले का रुख करबला की जानिब किया, उधर से जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के जो आखिरी उम्र में बाज रिवायात के मुताबिक नाबीना हो चुके थे, बिनाई जा चुकी थी, अपने गुलाम अतिया के साथ करबला तक आते हैं, अपने आका हुसैन की ज्यारत को आते हैं। जब करबला पहुंचे, अतिया से कहा, ऐ अतिया मुझे मेरे आका हुसैन की कब्र पर ले जा। अतिया कहता है, ऐ आका जाबिर, यहाँ कई कब्रें हैं, किसी कब्र पर कोई निशान नहीं है, मैं कैसे पहचान करूं कि कौन सी कब्र आपके आका हुसैन की है। अल्लाह अल्लाह जाबिर की मारिफत, कहते हैं तू मुझे कब्रों के दरमियान ला खड़ा कर दे। अरे अतिया ने जाबिर को कब्रों के दरमियान ला खड़ा किया, जाबिर ने एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या वलदी हुसैन, ऐ मेरे बेटे हुसैन तुझ पर मेरा सलाम हो, चचा जाबिर तेरी जियारत को आया है। अतिया कहता है, एक कब्र से सदाई अलैका सलाम अम्मी जाबिर, ऐ चचा जाबिर आप भी हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। जाबिर ने अपने आप को उसी कब्र पर गिरा लिया, इतना गिरिया किया, इतना रोए कि इसी आलम में गश आ गया। गश के आलम में क्या देखा, आका हुसैन की जियारत हो रही है, आका हुसैन तशरीफ लाते हैं, चचा जाबिर आपका यह एहसान है, आप तारीख में हुसैन के पहले जाहिर कहकर याद किए जाएंगे, लेकिन ऐ चचा जाबिर मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए हमारी कब्रों से दूर चले जाइए। जाबिर ने तड़प कर पूछा, है हुसैन क्या कोई गुस्ताखी हो गई। नहीं चचा जाबिर, मेरी बहन शहजादी जैनब को शाम से तशरीफ ला रही है। ऐ जाबिर दूर चले जाइए कब्र से, दूर हट जाइए, कुछ फासले पर चले जाइए। जाबिर को खुशी से इफाका हुआ, अपने गुलाम अतिया से कहा कि ऐ गुलाम क्या तुझे कोई काफिला आता दिखाई दे रहा है। अतिया ने देखा कि काफिला आ रहा है। जाबिर ने पूछा, क्या ये कोई लश्कर तो नहीं है। अतिया ने जवाब दिया, नहीं ऐ आका जाबिर, ये लश्कर मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऊँटों का काफिला है, ऊँटों पर अमारियाँ सजी हुई हैं, हर अमारी के पर्दे स्याह हैं, ऐसा महसूस होता है कि कुछ बीबियाँ तशरीफ ला रही हैं। जाबिर ने जब ये जुमले सुने तो समझ गए। अतिया से कहते हैं, शायद इस काफिले में मेरा बीमार भतीजा सैयद सज्जाद भी होगा। ऐ अतिया, अगर इस काफिले में मेरा भतीजा आ रहा होगा, अगर मुझे मेरे भतीजे से मुलाकात नसीब हो गई, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐ अतिया मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अतिया ने सवाल किया, ऐ जाबिर ये बताइए कि आपके भतीजे सैयद सज्जाद की अलामत क्या है, मैं कैसे पहचानूँ, मैं कैसे पता करूँ। अब जाबिर ने अलामतें बताई हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप रोते जाइएगा, सर को पीटते जाइएगा। पहली अलामत, ऐ अतिया मेरा भतीजा जैनुल आबिदीन कड़ियल जवान है। ऐ अतिया मेरे भतीजे के बाल स्याह है, चेहरा बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही पुर रौनक है। अरे मेरे भतीजे सैयद सज्जाद की कमर इंतहाई सीधी है, कदकाठ बहुत बुलंद है। अतिया जब काफिले के करीब गए, लौट कर दौड़ कर आते हैं, ऐ आका जाबिर आपने जो सिफात बताई थी, उस सिफात का कोई जवान काफिले में नहीं पाया जाता, क्या काफिले में कोई मर्द है। हाँ आका जाबिर, एक मर्द है कि जिसकी हालत यह है कि जो बहुत बूढ़ा है, कि जो बहुत जख्मी है, कि जिसकी کمر جھکی ہوئی ہے، کہ جس کے سر کے بال سفید ہیں، کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، کمر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں مجھے قریب لے جاؤ۔ جب قریب لے گئے، جابر نے سوال کیا، ہے بزرگ آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے بھتیجے سید سجاد کو جانتے ہیں؟ ارے عزیزوں، میرا آپ سے سوال ہے، جب کسی کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا والے اس جوان اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، پرشا پیش کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جس جوان کو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک آج تک کسی نے اپنے بابا کا پرشا نہ دیا ہو، وہ مولا سید سجاد جب کسی اپنے کو دیکھا، جب جابر کو دیکھا، تو اس سے پہلے جابر کچھ کہتے، آقا سید سجاد جابر کے گلے لگ گئے، چچا جابر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا، چچا جابر ہاں ہونا مقاتل و رجالنا، اسی زمین پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، اسی زمین پر ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا، چچا جابر مجھے کسی نے بابا کا پرسہ نہیں دیا، چچا جابر مجھے میرے بابا کا پرسہ دیجیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شہزادی فاطمہ زہرا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ چہلوں میں حسینی ہیں، خدا کی قسم حق ہے کہ اس طرح گریا کیا جائے، حق ہے کہ سر کو پیٹ کے ماتم کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ چچا جابر سے گلے ملے ہیں، کہنے لگے ہیں چچا جابر ایک گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو کچھ دور ہٹ جائیے۔ جابر نے سوال کیا، بیٹا سجاد وجہ کیا ہے؟ چچا جابر میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ حسین کی دکھیاری بہنیں آئی ہیں۔ جابر کہتے ہیں بیٹا سجاد میں تو نابینا ہوں، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اے چچا جابر، آپ نابینا تو ہیں، لیکن جب زینب علیا پہلی بار اپنے بھائی کی قبر کو دیکھے گی تو جس بلند آواز میں گریا کرے گی، سید سجاد کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ پھوپھی زینب کے گریے کی آواز بھی صحابی رسول کے کانوں میں پڑ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس میں اختتام کر رہا ہوں، خوب رو لیا، خوب گریا کر لیا، حق ہے کہ آج کے دن گریا کیا جائے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جابر ایک سمت کو ہٹے ہیں، بیبیاں کربلا میں تشریف لاتی ہیں، بیبیاں سید سجاد کے جانب گھیرا بناتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے بابا کو دفن کیا ہے، ہم اپنے پیاروں پر بعد میں روئیں گے، پہلے ہمیں بتاؤ ہمارے آقا حسین کی قبر کون سی ہے۔ آقا سید سجاد نے قبر کی نشاندہی کی، ہر بیوی نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، ہر بیوی وا سیدہ وا امامہ وا حسینہ کہہ کر ماتم کرتی گئی۔ بیویوں نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرا لیا، بیویوں کو قبر حسین پہ روک کر، جانتے ہو میرا مولا سید سجاد کہاں گیا ہے؟ تڑپ جاؤ گے ان جملوں کو سن کر، مگر میں ہاتھ جوڑ کے سادات سے معافی مانگ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں۔ بیویوں کو قبر حسین پر بٹھایا، میرا سید سجاد مولا فرات کی جانب چلا ہے، چچا عباس کی قبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اے چچا، میں کیا مصائب بیان کروں، کون سے غم آپ کو بتاؤں؟ الشام الشام الشام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں، جب بیویوں نے آقا حسین کی قبر پہ جی بھر کے ماتم کر لیا، آقا سید سجاد سے خواہش ظاہر کی، بیٹا سید سجاد، ہمیں ہمارے بھائی، ہمارے کفیل، ہمارے حامی ابو الفضل العباس کی قبر پر لے جا۔ ارے بیویاں عباس کی قبر پہ پہنچی ہیں، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے۔ شہزادی زینب نے بیویوں کو مخاطب کیا ہوگا، علماء یہ جملے بیان کرتے ہیں، بی بی بیویوں سے کہنے لگی، اے بیویوں قبر عباس پر ہر مصیبت کو بیان کر دینا، ہر غم کو بتا دینا، دل کی ساری مصیبتوں کو بیان کرنا، اپنے دل کو ہلکا کر لینا، اے بیویوں عباس کی قبر پہ یہ مصائب بھی پڑھ دینا کہ کربلا سے کس طرح تمہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا، اے بیویوں یہ مصائب بھی پڑھ دینا کس طرح بے کجاوا اونٹوں پر تمہیں سوار کیا گیا، ارے کس طرح بے مکنا و چادر تمہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا گیا، اے بیویوں قید خانے کے احوال بھی پڑھ دینا، دربار کے مصائب بھی سنا دینا، عباس سے ہر مصیبت کا ذکر کرنا مگر ایک مصیبت بیان نہ کرنا، اے بیویوں عباس کی قبر پہ ہرگز یہ نہ کہنا کہ حسین کی چار برس کی سکینہ یتیمہ شام کے زندان میں رہ گئی، عباس اس مصیبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ اس دن کا، تجھے واسطہ اس دن شہزادیوں کی زیارت کا، تجھے واسطہ اس دن حضرت جابر کی زیارت کا، ہم سب کو زندگی میں بار بار آقا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پر روز اربعین جمع ہیں، جو مومنین مجلس میں گریا فرما رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، بار الہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جو خادمین ہیں امام بارگاہ کے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بار الہ جو مومنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں، اتنا مقدس اجتماع ہو رہا ہے، زائرین سید الشہداء کربلا معلا میں جمع ہیں، دنیا کے تمام مومنین کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔